क्या आपके कोई दोस्त, अजीज या रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए कई तरह के स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम मौजूद हैं, जिनका मकसद स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक में तालीम के मौके फराहम करना है। आइए इस सिलसिले में कुछ मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तालीम के हुसूल के लिए मुख्तलिफ किस्म के वीज़ों की सब कैटेगरी मौजूद है, जिन्हें सब क्लास वीज़ा कहा जाता है, और ये वीज़े खास तालीमी शोबे के लिए दिए जाते हैं। इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल, आला तालीम और तरबियत के प्रोग्रामों के साथ साथ तालीमी वज़ाइफ और स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप के वीज़े भी शामिल हैं। माइग्रेशन एजेंट मैरिया जैकल तालिब इल्मों के वीज़े की मुख्तलिफ अकसाम की वजाहत करते हुए कहती हैं,
risk. If, for example, they're assessment level 3, that is the highest level of a risk, and hence they've got to provide more information and documentation. There's a number of countries that fall into these high levels of assessment criteria: Bangladesh, China, Burma, Ecuador, Egypt, गाना, इंडिया, कजाकिस्तान, केन्या
के वीजे की सब क्लासेस के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया मौजूद है। दरखास्त के वसूल होने के बाद उसके वीजे की सब क्लास में सबसे पहले तालिब इल्मों के पासपोर्ट का रिस्क फैक्टर देखा जाता है, और ये काम इमिग्रेशन का महकमा करता है। मसलन रिस्क लेवल 3 का मतलब है कि इन ममालिक के पासपोर्ट रखने वाले तालिब इल्मों का रिस्क ज्यादा होता है और उनका पस मंजर या बैकग्राउंड चेक में ज्यादा वक्त लग सकता है। इस रिस्क लेवल यानी 3 में जिन ममालिक के पासपोर्ट शामिल हैं, उनके वो वीजे देते वक्त ज्यादा छानबीन की जाती है। इन ममालिक में बांग्लादेश, चीन, बर्मा, इक्वाडोर, मिस्र, घाना, भारत, उर्दन, पाकिस्तान और कीनिया शामिल हैं। इमिग्रेशन के महकमे की जानिब से रिस्क लेवल के तायुन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड तालीमी मराकज, कॉलेज या इंस्टीट्यूट दरखास्त देने वाले तालिब इल्म की जांच पड़ताल करके दरखास्त को कबूल करते हैं। रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की फहरिस्त कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स की वेबसाइट पर मौजूद है। मैरिया जॉकल कहती हैं कि तालीमी मरकज तालिब इल्म को दाखिले की पेशकश करता है, तो तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो दाखिले की शराइत को समझे बगैर इनरोलमेंट ऑफर कबूल ना करे।
As each country across each education sector is assigned this assessment level, which is based on the calculated immigration risk that the Department of Immigration considers students from that country pose in studying in that education sector, you'll notice that some students are able to apply online and they have access to what we call streamlined student visa processing. Other students do not have that sort of access and they must make what we call paper-based applications.
अगर आप तालीमी इदारे की दाखिले की पेशकश या इनरोलमेंट ऑफर को कबूल करते हैं, तो फिर आपको फीसों की पेशगी अदायगी के मरहले से गुजरना पड़ता है। हर कोर्स की अलहदा फीस होती है और स्टूडेंट वीजे के लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमी है। दरखास्त देने वाले तालिब इल्म को कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ये भी जरूर मालूम करना चाहिए कि अगर उनको किसी वजह से वीजा ना मिल सका तो फीसों की वापसी का क्या तरीकाकार होगा, क्योंकि दाखिले की शराइत पूरी होने के बावजूद तालीमी वीजा मिलना यकीनी नहीं होता। फीसों की अदायगी और ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश के अखराजात के सिलसिले में भी इमिग्रेशन के महकमे का अपना पैमाना है, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि आने वाले तालिब इल्म माली तौर पर अखराजात उठाने के काबिल हैं या नहीं।
जस्ट बिकॉज अ यूनिवर्सिटी और अ टेफ or a school provides them with what's called a confirmation of enrollment or a letter of offer, the person still has to satisfy the department that they are genuinely applying for this visa with the intention to obtain a successful educational outcome, and in that context that they have the language, educational and material meaning financial and other background to have a reasonable chance of achieving this educational outcome.
Immigration department darkhast guzar ki ahliyat se mutmain ho to student visa jari kiya jata hai. Talib ilm ke liye zaruri hai ki wo visa ki tamam sharait ko gaur se padhe, kyunki Australia mein student visa par aane walon ki juz waqti mulazmat karne ki mukhtalif sharait hain, jabki kul waqti taur par koi talib ilm mulazmat nahi kar sakta.
People often don't take note of the visa cease date. It is imperative that they do so, because if they're in Australia studying and their student visa expires, they could in fact find that they've become unlawful. The student visa is here for them to primarily study, not to work. And so they must make their study their focus. However, if they are undertaking work and also studying, and they are working lawfully and not in breach of the work limitation that their student visa is subject to, international students have the same rights as anybody else in Australia.
طالب علم حالات کے حساب سے اپنے کورس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، مگر کورسز کی تبدیلی کے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آپ ویزے کے قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہوں۔ گرچہ آسٹریلیا کے تمام تعلیمی ادارے آسٹریلین قانون کے تحت طالب علموں کو دیے گئے حقوق دینے کے پابند ہیں، مگر پھر بھی غیر ملکی طالب علم سوشل، کلچر اور فائنینشل پریشر کے تحت مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔
And if it gets to that point, external complaints mechanisms so that the student's grievances can be appropriately addressed. If the person, however, has got themselves into a situation where they may have potentially breached their student visa conditions, that they failed to meet the course requirements or something of that nature, then really, in that situation, they may need to get proper legal advice as to what that means in terms of their ongoing visa status.
اس سلسلے میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے محتسب اعلیٰ یا آمبیٹسمین کا محکمہ موجود ہے، www.ombudsman.gov.au/about/overseas-students پر جائیے۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن کی ویب سائٹ پر بھی بہت سی تفاصیل دیکھی جا سکتی ہیں۔ جب آپ ویب کے اوپر یہ تمام معلومات سرچ کر رہے ہوں تو دھیان رکھیے کہ یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، اسٹوڈنٹ ویزا کیا ہے؟ نمبر 2، اسٹوڈنٹ ویزا کی کتنی اقسام ہیں؟ نمبر 3، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ نمبر 4، اسٹوڈنٹس اپلیکیشنز کی جانچ پڑتال کا، امیگریشن کا اور تعلیم اداروں کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس سلسلے میں کس طرح کی دستاویزی ثبوت مانگے جا سکتے ہیں؟ نمبر 5، طالب علموں کی آسٹریلیا میں داخل ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ اور نمبر 6، کہ کس طرح آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں یا اگر کوئی شکایت ہو تو اس کو نچلی سطح سے اوپر کی سطح تک پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آسٹریلیا میں تمام غیر ملکی طالب علموں کو ایجوکیشنل سروسز فار اوورسیز اسٹوڈنٹ ایکٹ کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ساتھ ہی طالب علموں کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے آمبیڈسمین یا محتسب اعلیٰ کا ادارہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس معلوماتی فیچر کے کسی حصے کو دوبارہ سننا چاہیں تو www.sbs.com.au/اردو پر جائیے، www.sbs.com.au/اردو۔